वाली नस्लें तेरे इश्क ही में मचले, इन्हें नेक तुम बनाना, मदनी मदीने वाले।
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله مدنی چینل کے ناظرین ہمارا پروگرام ہماری نسلیں آج ایک ماں کے اکلوتے بیٹے کا واقعہ میں نے آپ کو بیان کرنا ہے اس سے پہلے درود پاک کی فضیلت سن لیتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے روز میرے سب سے زیادہ نزدیک وہ شخص ہوگا جس سے دنیا میں مجھ پر کثرت سے درود پڑے ہوں گے صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد ایک ماں کا اکلوتا بیٹا وہ اپنی ماں کی آنکھوں کا تارا بھی ہوتا ہے دل کا سکون بھی ہوتا ہے اور امیدوں کا مرکز بھی ہوتا ہے اور جب والد کا انتقال ہو جائے تو پھر ماں جس کوششوں کے ساتھ اور محنت و لگن کے ساتھ اس کو پالتی ہے اس کی پرورش کرتی ہے وہ ایک اپنی مثال آپ ہوتا ہے ایسا ہی ایک بیٹا تھا جو اپنی ماں کی کل دنیا تھا ماں کام کاج کر کے کچھ بھی کر کر آ کر اپنے بیٹے کو پالتی پوستی پڑھاتی اس کی تعلیم وغیرہ کا سارا انتظام وہ کرتی رہی امتحان کا وقت قریب ہوتا دعائیں کرتی مزید کوششیں مزید محنت کرتی کہ بچہ اچھی تعلیم حاصل کر لے خیر بیٹا بھی آہستہ آہستہ بڑھتا گیا تعلیم بھی حاصل کرتا گیا کامیابیاں بھی حاصل کرتا گیا حتیٰ کہ کالج میں بھی پہنچ گیا اور وہاں بھی اچھے نمبروں کے ساتھ اچھی مارکس کے ساتھ وہ وہاں سے بھی کامیاب ہوتا چلا گیا آخر کار ڈپلوما ہوا ڈگری بھی حاصل کی اور آ کر ماں کے ہاتھوں میں رکھ دی ماں بھی بڑی خوش تھی کہ برسوں کی محنت پار لگتی ماں کو نظر آ رہی تھی ماں نے بڑی محنت کی تھی بڑا اس کے لیے مزدوری کی تھی اور بڑی قربانیاں دی تھی یہ مائیں بڑی قربانیاں دیتی ہیں پھر یونیورسٹی میں بھی داخلہ ہو گیا ایک دن ماں نے کہا بیٹا اب تو یونیورسٹی میں بھی چلا گیا ہے بڑا ہو گیا ہے میں نے بچپن میں تیری مامو زاد جو بیٹی ہے مامو کی بیٹی ہے اس سے میں نے زبان کی تھی کہ میں تیری شادی اس سے کرواؤں گی تو اب تو بیٹا تو بھی بڑا ہو گیا ہے شادی کی عمر بھی ہو رہی ہے میں بھی چاہتی ہوں کہ گھر میں بہو آ جائے میں بھی پوتے پوتیوں سے کھیلوں وغیرہ وغیرہ کر کے میری بھی آرزو میں تمنا ہے تو بیٹے نے کہا ماما یہ کیا 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 کہہ رہی ہو وہ ماں اس کی تو نہ تعلیم ہے وہ تو وہ اس کے ساتھ میری شادی کیسے ہو سکتی ہے میں کالج میں پڑھ رہا ہوں میں یونیورسٹی میں ہوں میں میری تعلیم ماں آپ کے سامنے ہے میں شادی ایسی لڑکی سے کرنا چاہتا ہوں جو پڑھی لکھی ہو یوں ہو یوں ہو پھر اس نے تھوڑے سے اپنے مقاصد بیان کیے اور وہ ماموزا لڑکی سے شادی کے لیے تیار ہوا نہیں اب ماں کا تھا یہ اکلوتا نازوں سے بھی پالا تھا ماں اس سے پہلے کچھ کہتی تو وہ اس کی بات دل کی دل میں رہ گئی اور کچھ بھی نہ کر سکی اس مامو اور اس کی بیٹی کو بھی پتا چلا کہ یہ تو ہم جو تمنا لگائے بیٹھے تھے اور جب یہ ترقی کر رہا تھا اور تعلیم حاصل کر رہا تھا تو لڑکی کو بھی ایسا تھا کہ چلو मुझे भी कोई अच्छा घर और इस तरह लड़का मिल जाएगा, उसके भी ख्वाब और सारे मतलब के जो भी उसके इरादे मंसूबे थे सारे चकनाचूर हो गए और तहस नहस हो गए। खैर माँ बड़े सब्र और तहमुल के साथ चलती रही और बेटा आगे मजीद बढ़ता चला गया। आखिरकार उसे एक अच्छी नौकरी मिल गई, अच्छी सैलरी, अच्छी अप्रोच, नौकरी भी अच्छी। उसने आकर अपनी माँ को नौकरी खबर दी, माँ बहुत खुश हुई कि तुझे नौकरी भी मिल गई। और माँ तो माँ होती है, माँ खुश नहीं होगी तो फिर कौन खुश होता है। तो उसने कहा माँ अब ये शहर में नौकरी मिली, अब ये जो गांव में जो हमारा घर है अब इसको भी बेचो ना, और बेचकर हम शहर में अपना मकान लेंगे। तो माँ के पास सिवाय हाँ कहने के कोई दूसरा रास्ता था नहीं, वो क्या करती, अकेली रहती, अकेली तो रह नहीं सकती थी। फिर वो अपनी माँ को लेकर शहर गया, मकान लिया, अच्छा मकान लिया। और मकान की जब डॉक्यूमेंटेशन की बारी आई के तो जो डॉक्यूमेंटेशन में साइन करनी थी, तो उसने पूछा रजिस्ट्रार ने के किसके नाम पर मैं ये रजिस्ट्री बनाऊ, पेपर बनाऊ। उसने कहा किसके नाम पर बना, मेरे नाम पर बनाना है और किसके नाम पर बना। माँ इसको यूं देखती रहेगी कि पूछा तक नहीं कि माँ आपके नाम पर कर दूं या कुछ नहीं, कुछ भी नहीं, नो लिफ्ट। चलो माँ माँ थी, माँ क्या करती, अच्छा करता, रहना शुरू हुए और उसने अपनी जॉब पर जाना भी शुरू किया। चंद दिनों के बाद उसने अपनी अम्मी को कहा अम्मी वो मैं जब घर से आता हूँ जाता हूँ तो पड़ोस में एक फैमिली है, मुझे अच्छी फैमिली लगती है, इनकी लड़की भी है कोई, मुलाकातें या रबते या सामना आमना हुआ होगा, रबते हो गए होंगे उसके। तो उसने अपनी माँ को कहा कि अगर वो यूं यूं है और मैं चाहता हूँ कि उससे मेरी शादी हो जाए तो आप मेरी उससे शादी की बात करो। तो माँ ने कहा ठीक है बेटा, अगर तुम्हें लड़की पसंद है तो मैं जाकर देख लेती हूँ। कहा देख भी लो ना, बात पक्की करके शादी की कर कर। तो ये बिल्कुल इसी तरह चल रहा था बेटा। खैर माँ आखिरकार शादी की बात कर आई और वहां भी पसंद हो गया कि चलो लड़का देखा हुआ है, शादी हो गई दोनों की। पड़ोसी थी वो लड़की, घर आबाद हुआ, बहू घर में आई, पढ़ी लिखी थी, ज्यादा तालीमी याफ्ता थी, थोड़ा घराना भी उसका ठीक ठाक था। अल्लाह ताला ने करम किया और बहुत जल्दी दादी को पोता भी मिल गया। दादी खुश कि चलो पोता भी मिल गया, तो बहू भी है, बेटा भी है, पोता भी है। अब दादी का दिन रात काम किया, पोता और दादी, दादी और पोता, उसको खिलाना धुलाना पिला कपड़े वगैरह ये वो, दादी अब इन कामों में मसरूर रहती। अब जो बहू थी ये यूं तो पढ़ी लिखी और दिखने में भी मतलब ठीक ठाक थी, लेकिन किरदार के ताल्लुक से, सीरत के ताल्लुक से फिर उसका एक नया रूप सामने आया। इसने एक दिन अपने शौहर को कहा कि देखो मैं तुम्हें साफ साफ बता दूं, तुम्हारी माँ की वजह से जो मेरी जिंदगी है ना वो जहन्नम बनी हुई है। लड़का हक्का बक्का रह गया, इसको क्या हो गया, क्या हुआ तुम्हें? बोला बस देखो ये ज्यादा मैं लंबी चौड़ी तो बात नहीं करती आपसे, वो सिंपल सी बात है, या तो इस घर में आपकी माँ रहेगी या इस घर में मैं रहूंगी। लड़का सीधा हुआ, लड़के के लिए ये एक अचंभी सी बात थी, एक नई बात थी कि ये बैठे बैठे क्या हो गया, अभी तक तो सब सही चल रहा था। बस ये बताओ तुम्हारे लिए मैं जरूरी है, तुम्हारी माँ जरूरी है? देखो मैं तुम्हें नाराज नहीं कर सकता, तुम्हारा दिल नहीं दुखा सकता, मैं तुमसे मोहब्बत करता, लेकिन वो मेरी माँ है। ठीक है, या तो फिर वो रहेगी या मैं रहूंगी, लेकिन मैं उसके साथ नहीं रह सकती। तुम्हारी माँ है, मेरी सास है, सब अपनी जगह पर है, लेकिन फैसला तुम कर लो। फिर वो समझा बुझा कर थोड़ा सा उसने टाइम गेन किया लड़के ने। अब माँ का एक मामूल था कि वो बच्चे के साथ अपने पोते के साथ रहती, बहू के काम काज भी कर देती, घर के कामों में जैसे एक आम सास होती है ना, ये पोते बहू काम काज किचन साफ सफाई सुधी घर के कामों में इन्वॉल्व होती है, और इन्वॉल्व रहना भी चाहिए, वरना बैठे बैठे वैसे मतलब के हाथ पैर घुटनों को जंग लग जाता है। तो वो प्रैक्टिस में रहती थी और काम काज करती थी, वो भी अपनी जगह पर कुछ ना कुछ कर ही लेती थी। लेकिन बात क्लियर हो चुकी थी कि बहू ने अब सास के साथ यानी एक छत के नीचे रहना नहीं था। लड़का भी जांच रहा था कि हो क्या रहा है, कुछ बातें सुनता। आहिस्ता आहिस्ता बेटे का जो एटीट्यूड था, रवैया था, वो अपनी माँ के साथ नेगेटिव होना शुरू हुआ, मनफी। पहले जिस तरह बात करता था, बैठता था, अम्मी अम्मी करता था, थोड़ा टाइम देता था, नथिंग, बेरुखापन बेटे का शुरू हुआ। बाद होते हैं ऐसे बेटे जो मतलब फिर माँ के साथ उनका एक अजीब सा अंदाज हो जाता है, एटीट्यूड उनका अजीब सा हो जाता है। बदकिस्मती के साथ अपनी बीवी के सामने अपनी माँ के साथ हंसी मजाक बातचीत करते हुए उनको गोया के जैसे कि अजीब सा लगता है, वो अपनी बीवी को खुश करने में लगे होते हैं, माँ का दिल गुर्दा फेफड़ा दिमाग बर्बाद होता हो तो इनको इस बात की कोई परवाह नहीं होती, वो माँ की सारी कुर्बानियों को आहिस्ता आहिस्ता भूलते चले जाते, क्योंकि नई जिंदगी होती है, बीवी होती है, बच्चे होते हैं, समझते यही हम कारा सब कुछ है, यही हमारी एक पूरी सी जिंदगी है। तो वो इस अंदाज में चलने लगा, मियां बीवी और बच्चा एक सेपरेट जिंदगी की तरफ जाने लगे। माँ विशेष फील करती थी कि पोता मेरे पास उतना नहीं रहता, बहू मुझे लिफ्ट नहीं कराती, एक बेटा था वो भी अब सही मुंह मुझसे बात नहीं करता। अब ये ना ये दम घुटता है ना, ऐसे ऐसे माहौल में आदमी का दम घुटता है कि रह कैसे, घर की एक छत के नीचे मुझसे मेरे ही बच्चे और मेरा ही पोता मेरी बहू मुझसे सही मुंह बात ही नहीं कर रहे, मुंह चढ़ा कर बैठे हुए हैं, मुझसे मुझे अजनबी बना दिया है। इसने कहा कि बेटा मैं अगर तुम कहो तो मैं चंद दिनों के लिए अपने किसी रिश्तेदार के यहाँ जाना चाहती हूँ, किसी को दूर रिश्तेदार थे। बड़ा माँ थोड़ा दिन हुआ हो, थोड़े दिन हुआ हो, कोई नहीं कोई नहीं। तो चली गई, बेटे ने कहा रोकना था, वो चंद दिन अपने रिश्तेदार के यहाँ बूढ़ी माँ चली गई और वहां बहू ने बेटे ने सुकून का सांस लिया कि चलो बुढ़िया घर से गई। हाय हाय, अब वो बूढ़ी माँ रिश्तेदार के यहाँ बैठी और पोता याद आया ना, सच्ची बात है दूध से ज्यादा दूध की मलाई अच्छी लगती है। अब ये जो औलाद के जो बच्चे होते हैं ना, ये दादा दादी नाना नानी को बहुत प्यारे होते हैं, जनरल बात कर रहा हूं। अब उसे रे रे कर पोता याद आए, पोता भी बड़ा दादी के साथ घुला मिला हुआ था, पोता थोड़ा बड़ा हो गया था, पोता दादी को पहचानता था समझता था, थोड़ा टाइम हो गया था। अब उसको पोता याद आए, फिर बेटा भी याद आए, फिर बेटे को भी देख लूं। एक दिन हिम्मत करके वो कहा के रिश्तेदार से कि मैं जा रही हूं अपने बेटे से मिलने के लिए। कहा हाँ जाओ जाओ। अब वो बिचारी के पास पैसे किराया वगैरह तो था नहीं, पैदल चली धूप में, चिलचिलाती धूप में पैदल चलते चलते दरवाजे तक पहुंची बेटे के। दरवाजा बजाया, दरवाजा खुल ही नहीं रहा, और बजाया खुल ही नहीं रहा, तो और बजाया तो दरवाजा खुल गया, थोड़ा तो जोर से बजाया तो सामने बहू खड़ी थी। बहू देख कर, आप अब ये क्या करने के लिए आई हो, हमें सुख से रहने देना नहीं रहने देना, क्यों हमारी जिंदगी को जहन्नम बनाने पर तुली हुई हो, क्यों हमारी खुशियों को डाका डालने के लिए आती हो, अच्छी खासी जिंदगी के दिन गुजार रहे थे हम, दोबारा फिर आ गए। मुंह उठाकर सास के पांव तले तो जैसे कि जमीन सी सड़क गई कि ये हो क्या गया है, ये मुझसे किस तरह बात करी है मेरी वो। तो कहा बेटा वो मुझे वो पोता याद आ रहा था, तो मैं तो अपने पोते से मिलने के लिए आई थी। इतने में वो लड़का बाहर आया, माँ भी थोड़ी घर के अंदर दाखिल हो गई और बेटा माँ के पास, बेटा माँ रहने दो ना हमारी खुशी से के साथ। क्या बोला बेटे ने, माँ रहने दो ना हमें खुशी के साथ, क्यों हमारी खुशियों पर डाके मारती हो माँ, तुम्हारा बेटा खुशी खुश रहता है तो मैं अच्छा नहीं रखता मां। अब मां बेटे का मुंह देख रही है, मां के ऊपर तो बिजली गिर गई, मां के ऊपर जैसे कि आसमान टूट पड़ा। मां बोले ये वही है जिसके लिए मैंने अपनी सारी मतलब की उम्र ताक दी, मेहनत मजदूरी करती रही, अपनी खुशियों का अपनी मतलब अपनी आरजुओं का मैं गला घोंटती रही और इसकी तरक्की के लिए दुआएं करती रही। ये इसको जब भी कामयाबी मिलती थी सबसे ज्यादा खुश मैं होती थी और आज मुझे कह रहा है कि मैं इसकी खुशियों पर डाका डालने के लिए आई हूं। जब यही सुनना था मेरे मुझे, मां तो सकते में आ गए ना। अब बेटा समझ तो गया कि मां को भी झटका तो ठीक ठाक लग गया है। तो देखो मां एक काम करते ना, मियां बीवी ने थोड़ी देर में प्लानिंग की एक, फिर मां को आकर के मां एक काम करते एक जगह चलते हैं, चलो थोड़ा चक्कर लगाकर आ जाते हैं, तुम्हारी बहू भी चलती हम भी चलते हैं, थोड़ा मूड सही हो जाएगा। माने कहा कि चलो जब तुम दोनों कहते हो तो मैं भी चलती हूं। दादी अपने पोते को लेकर पीछे बैठ गई और गाड़ी चली, गाड़ी एक जगह रुकी, सारे अंदर गए, मां को जब एक शख्स आकर कहने लगा बीबी आपका नाम क्या है, जब उसने नाम लिखना शुरू किया और रजिस्टर में एंट्री करनी शुरू की तो मां को लगा कि ये तो मुझे ओल्ड हाउस में ले आया है, ये तो मुझे अपने घर से अपने रिश्तेदार हर जगह से उसने मुझे निकाल दिया। और बेटा मां को वहां बिठाकर ओल्ड हाउस के अंदर गाड़ी में बैठकर अपने बीवी बच्चों को लेकर निकल गया। अब मियां बीवी खुश कि ये गई ओल्ड हाउस के अंदर, वहां पोता रो रहा है दादी दादी दादी, वहां दादी रो रही है, वहां बेटा खुश बीवी खुश, जान छुटी। ये गाड़ी फर 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 करके फराटे लेकर दौड़ने लगी, जब जान छूट गई वहां मां का जो दिल टूटा अल्लाह अल्लाह, जो मां को जो सदमा हुआ अल्लाह अल्लाह, वो आप देख सुन रहे हैं आप समझ रहे होंगे कि सो मां पर क्या बीती होगी कि बिन बाप के बच्चे को मैंने इसलिए पाल पोस के बड़ा किया था कि आज ये मुझे ओल्ड हाउस में दाखिल करवा देगा, मेरे साथ ये सुलूक करेगा। गाड़ी जा रही है, अचानक ऐसा जैसे कि लड़की तो बहू तो खुश थी जो बुढ़िया गई, बेटे ने अपनी मां को छोड़ दिया, बहू खुश हो गई, बहू की मुराद पूरी हो गई एक तरह से। और बेटा जो कि वैसे ही बीवी पर लट्टू था, उसकी तो मत मारी गई थी ना, वो तो बीवी की बातों में आ चुका था, वो अपनी मां की मोहब्बत कुर्बानियां और मां की सारी जो जिंदगी भर की वो कोशिशें थी सब वो भूल गया, अल्लाह और उसके रसूल के फरमान भूल गया, सब कुछ भूल चुका था वो गोया के। और गाड़ी चल रही, अचानक उसको पता नहीं क्या दिमाग में बेटे को आया कि जैसे चला रहा तो मां गाड़ी पर चलाते चलाते जैसे गाड़ी की सामने स्क्रीन के सामने मां का जैसे कि इसकी आंखों के सामने गम जदा चेहरा मां का आंखों के सामने आने लगे, तो मां बड़ी गमगीन है मां बड़ी, तो वो गाड़ी चलाते चलाते मां के उस गम जदा चेहरे के तस्वुर में गुम हो गया कि मेरी मां जैसे कि मुझे कंप्लेन कर रही है, मां जैसे मेरी रो रही है, मां जैसे मेरी गमजदा है। तो गाड़ी चला जाता दिमाग उसका अपनी मां के गमजदा चेहरे में चला गया। इतने में तेज जोर से आवाज आई बीवी की, रोको 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 बचो, और यूं करते हुए देखा तो गाड़ी सीधी बहुत बड़े ट्रक या गाड़ी बस के अंदर धस चुकी थी, जबरदस्त एक्सीडेंट हो गया, बीवी वहीं दम तोड़ के मर गई, का इंतकाल हो गया। बेटा अपाहिज हो गया, टांगे टूट गई उसकी, अस्पताल पहुंचा दिया गया। और पोता कुदरत देखिए, एक खराश तक नहीं आई पोते को, एक खराश तक नहीं आई पोते। जब आदमी को होश आया तो उसको पता चला कि बीवी तो मेरी इंतकाल कर गई है, पांव मेरे खत्म हो चुके हैं। अब वो समझ तो गया था कि हो ना हो मुझे मेरी मां की बद्दुआ लगी है, अब उसकी जबान पर सिर्फ एक ही बात थी, मुझे मेरी मां से मिला दो, मुझे मेरी मां से मिला दो, मुझे मेरी मां से मिला दो। मां ओल्ड हाउस में पड़ी अपनी बेटी की बेवफाइयों को याद कर रही थी। मां को इस हादसे की जैसे ही इत्तला मिली, मां मां थी ना, मां का दिल पसीज गया, उसको सदमा हुआ, आंखें भीग गई और बेकरार दिल से अपने रब के हुजूर हाथ उठाकर मां दुआ करने लगी, या अल्लाह मेरे बेटे को शिफा अता कर दे, बेटा अल्लाह तुझे शिफा अता करे। बस मां इतना ही कर सकी। आज इस इकलौते बेटे की बेवफाई की दास्तान जो मैंने आज आपको सुनाई है, ना जाने ऐसे कितने ही बेटे हैं जिन्होंने अपने वालिदैन के साथ ऐसा या इससे बदतरीन सुलूक किया हुआ है। हमारी नस्लों में, हमारी औलादों में ये एक वायरस जमाने से आ चुका है, एक बर्बाद, एक कमजोरी जमाने से आ चुकी है, मां बाप के साथ बेवफाई। काफी औलाद है, थोड़ी नहीं है, सब नहीं है, मगर बड़ी तादाद है जो अपने वालिदैन के लिए बेवफा हो चुकी है, अपने मां बाप की कुर्बानियों को, अपने मां बाप की वफाओं को भूल चुकी है। मां इंतकाल कर जाती है तो बाप अपने बेटे को पालता पोसता। अब ये लॉकडाउन है ना, मैं शायद कुछ अरसे पहले मैंने बताया था आपको, ये लॉकडाउन है ना, बच्चों को तो नहीं ना पता होता कि अब क्या होगा, कैसे होगा, किस तरह होगा। छोटे बच्चे हैं, 5 साल के, 6 साल के, 10 साल के, इनको तो नहीं ना पता कौन परेशान है। सबसे ज्यादा परेशान बाप है, सबसे ज्यादा परेशान वालिद है, कैसे होगा, मैं कैसे इनके लिए इफ्तार और सहरी का इंतजाम करूं, मैं कैसे इनके लिए कपड़ों का इंतजाम करूं, कारोबार कैसे हो, कामकाज कैसे होगा, बिजनेस कैसे होगा, पैसे कहां से आएंगे। बहुत परेशान होगा इस वक्त बाप, और दूसरे परेशान मां होगी। ये इस वक्त दोनों बैठकर हो सकता है किसी कमरे के अंदर बात करते हो कि कामकाज नहीं है, पैसे नहीं है, बच्चे ईद कैसे मनाएंगे, इनके कपड़े कहां से आएंगे, इनके जूते कहां से आएंगे, पिछले साल इफ्तारों में यही हम पकाते थे, इस वक्त ये नहीं कर पा रहे, कैसे होगा। बाप कहता होगा आप टेंशन नहीं लो, मैं करता हूं कुछ, किसी से कर्जा, आप कर्जा जिसे मांगो, बोले यार मैं भी परेशान हूं, लॉकडाउन ने तो मुझे भी परेशान किया हुआ है। ऐसे कई गरीब मां बाप है दुनिया में जिन्होंने अपनी ख्वाहिशों को खत्म कर दिया। ईद आती अपने लिए एक जोड़ा ना बनाती मां, एक जोड़ा ना बनाता बाप, नहीं है बच्चों के लिए, इनको कुछ खाना होता कहते नहीं है बच्चों के लिए, कुछ पीना होता नहीं बच्चों के लिए, इन्होंने अपनी ख्वाहिशात को, अपने जज्बात को कुर्बान किया बच्चों के लिए। और जब ये बच्चे बड़े हो जाते हैं तो ये अपने मां बाप को अहमियत नहीं देते, इंपोर्टेंस नहीं देते, और जब इनकी शादी हो जाती है तो इनकी बेवफाइयां उरूज पर होती हैं। और जो ऐसी बहुएं होती है ना, ये अल्लाह से डरे जिन्होंने अपने शोहर के दिमाग के अंदर इसके मां बाप यानी कि अपने सास और ससुर के मामले में गंदगी जो भरी है ना, जैसे जो भी ऐसी बहू है, ये खुदा से डरे, ये खुदा से डरे कि इसका अंजाम अच्छा नहीं होता। एक मां अपने बेटे को लेकर बैठी थी, बेटा छोटा था, कोई बहुत बड़ा नहीं था, और मकान था नीचे का, साथ ही थोड़ा दूर एक क्वार्टर था, उस क्वार्टर में उसने अपने ससुर को रखा था। घर में जगह नहीं थी, जगह थी ससुर के लिए, जगह नहीं थी, और वहीं खाना वाना पहुंच जाता था ससुर के पास। थोड़ी घर के कामकाज से फारिग होकर आकर देखी तो बेटे ने एक ड्राइंग बनाई हुई थी, घर बनाया था। तो माँ बड़ी खुश थी, बेटा इतना अच्छा घर बना लिया, अरे शाबाशी दे रही थी। उसी ड्राइंग में घर बनाने में बच्चे ने एक अलग से क्वार्टर बनाया था थोड़ा सा दूर। तो माँ ने कहा, बेटा ये क्वार्टर क्या है, ये कमरा कौन सा है? घर से बाहर बनाया। कमी ये, जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो मैं ऐसा ही घर बनाऊंगा, और जिस तरह आपने दादा को अलग रखा है ना, अम्मी मैं आपको भी इस यहां रख दूंगा, बड़े वहीं रहते हैं ना। उफ, माँ को झटका लगा। माँ ने कहा, ये क्या हो गया? उसको मक्का फाते अमल जैसी करनी वैसी भरनी वाला सबक याद आया। उससे फौरन जाकर अपने ससुर से माफी मांगी और उसे घर में ले आई। अब शाम को जब बेटा तो होते हैं ऐसे, बेटों की अक्ल को दीमक लग जाती है, अक्ल को फाजिल लग जाती है, कि वो अपने माँ बाप की के साथ बद सुलूकी और उसने सुलूक को भूल जाते हैं, सिले रहमी को भूल जाते हैं। तो ये आदमी भी ऐसा ही था, वो बेबस लाचार बन के बैठे होते हैं कि हम क्या कर सकते हैं। और वो ये बेटा ये था, उसके सामने बाप क्वार्टर में था। जब रात को वापस आया, देखा तो सब सही है, खुश हो गया, चलो बीवी सेट हो गई। बीवी सेट हो गई तो बाप घर में आ गया, वरना उस बेचारे की तो चलती कोई नहीं थी। मुकाफत अमल, जो इस तरह की रवैये अख्तियार करती है ना, मैं आपको बताऊं, हमेशा अपने शोहर के दिमाग में उसके माँ बाप की मोहब्बत डालो, आपकी औलाद आपकी रहेगी। लेकिन कंप्लेंट्स ये वो, तो माँ और बेटी की भी हमेशा लड़ाइयां होती रहती थी, इस तरह बालों का सास बहू की भी 19-20 होती रहती। घर का काम काज है, ये क्यों नहीं किया, वो क्यों नहीं किया, उठी क्यों जल्दी, गई क्यों, ये क्या वो किया। तो उसे सास को दो लफ्ज कह दिए तो बेटी भी माँ को दो लफ्ज कह देती है। तो माँ बेटी है, माँ बेटी की सुनकर चुप हो जाती है, ठीक है चलो बातचीत हो जाती है। तो ये आपस का एक रिश्ता है, इसको निभाना चाहिए। और रात को शोहर के कानों को भरना नहीं चाहिए माँ और बाप के मामले में, ना ही माँ बाप को चाहिए कि वो बहू के मामले में अपने बेटे का दिमाग खराब करें। इससे घर में आग लगेगी, घर घर नहीं रहेगा। मगर यहां मौजू सिर्फ मेरा वो औलाद है कि जो मतलब इस तरह बातों में आकर अपने माँ बाप को उजाड़ देते हैं, अपने माँ बाप को उठा के फेंक देते हैं। रमजान का आखिरी अशरा था, एक बेटा अपनी बीवी और बच्चे को लेकर एक ज्वेलरी की दुकान में गया, सोने की दुकान में, गोल्ड, कि ईद के दिन में कुछ बीवी सोना वोना ले लेगी। माँ पोते को लेकर दुकान के बाहर खड़ी थी, मैं बल्कि दुकान के अंदर एक कोने में बैठी थी, और मियां बीवी सोना पसंद कर रहे थे, जेवरात पसंद कर रहे थे। ऐसे में बीवी को कुछ चीज पसंद आई, वहां माँ की नजर एक छोटी संगूठी पर पड़ी। तो वहां उसकी बीवी सोना ले रही थी, उसने कुछ चीज पसंद कर ली, सेट पेट ले लिया। तो उससे पूछा के कितने का दलो, 20,000 दिरहम का है। तो कहा ठीक है, ये 20,000 दिरहम दिए। तो उसने कहा वो 100 दिरहम और भी चाहिए। तो लड़के ने पूछा, 100 दिरहम की चीज, 20,000 दिरहम की सेट थी, 20,000 दिरहम मैंने वो कैश दे दिए, 100 दिरहम की चीज के? बोलो वो आपकी अम्मी है ना, उन्होंने एक अंगूठी ली और 100 दिरहम की है। तो बहू ने देखा, अब इसको इस उम्र में क्या पड़ी हुई है। तो बेटे ने कहा, अम्मी क्या तुम अंगूठी पहन के करोगे, ये को उम्र है माँ अंगूठी पहनने की, वापस कर दो। माँ ने अंगूठी दी, सब दुकानदार के सामने माँ ने अंगूठी दी, और वो बोले ये लो अंगूठी, नहीं चाहिए हमको अंगूठी। 20,000 दिरहम दिए, 100 दिरहम की अंगूठी माँ को ना दिलाई। और माँ का, माँ पर क्या बीत रही होगी, दुकानदार क्या सोच रहा होगा, आप तसव्वुर कीजिए। माँ किस भारी कदमों से दुकान से बाहर चली होगी, उसके चेहरे की रंगत कैसी होगी, वो दुकानदार के आगे शर्मिंदा कितनी हो रही होगी कि मेरे बेटे को बहू को दिलाने के लिए 20,000 दिरहम है, मुझे एक अंगूठी दिलाने के लिए 100 दिरहम मेरे बेटे के जेब में नहीं है, और मैं बुढ़ी हो गई। गाड़ी में बैठे तो अब बीवी शोर को डांटने लगी, बीवी शोर कर रही, ये तुमने क्या किया अपनी माँ के साथ, तुम क्या हुआ, और ये तो अब इसको बुरा लग जाएगा तुम्हारी अम्मी को, अब बताओ मुन्ने को पालेगा कौन, संभालेगा कौन, इसको नहलाएगा धुलाएगा कौन, अगर ये घर छोड़कर चली गई तो हमारा बच्चा कौन संभालेगा, तुम्हें समझ नहीं है। अरे डांट क्यों रही है, कि पोते को इसकी इसकी सास संभाले थी, सास दी थी जैसे घर की मुलाजिमा नौकरानी थी। अब वो घर वो गाड़ी से उतरा का आया और वो माँ ने अंगूठी नहीं ली। माने का बेटा मैंने अंगूठी ली थी कि ईद के दिन पहनूंगी तो बेबी कुछ खुशी मना लूंगी, लेकिन आज के बाद मैं कसम खाती हूँ बेटा कभी सोना नहीं पहनूंगी और तेरे हाथ से तो बेटा कभी भी नहीं लूंगी। ये बस सुलूकी, ये वाकियात है जो दुनिया में हो रहे, ये बस सुलूकी माँ बाप के साथ अगर औलाद करती। देखिए जो करती है मैं उसका कह रहा हूं, अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी औलादे हैं, ऐसी बहुएं हैं, ऐसी फैमिलीज हैं जहां पर सास राज करती है। अल्हम्दुलिल्लाह बहुएं अपनी सास की खिदमत करती है, औलाद अपनी माँ के आगे खड़ी रहती है और उस घर में मजाल नहीं है कि माँ बाप जो सास ससुर होते हैं माँ बाप के आगे कोई बात कर लो। यही घर आपको बच्चे हुए और दुआओं वाले मिलेंगे जहां ये बूढ़े वालिदैन की दुआएं मिलती हैं। बहू दुआ लेती है, बच्चे दुआएं लेते हैं, पोतों को दुआएं मिलती हैं, बेटों को दुआएं मिलती हैं और 19-20 घर में हो जाता है। इसमें लड़के का दिमाग नहीं खराब किया जाता, उसमें लड़ाई झगड़े नहीं किए जाते, उसमें एक दूसरे की इज्जत की जाती है। वहां सास को माँ का ही दर्जा दिया जाता है, ससुर को बाप का ही दर्जा दिया मिलता है और वो घर भी बहुओं को भी बेटी का दर्जा देते हैं और बेटा खुश है बीवी को बीवी के हक दे रहा है, माँ को माँ के हक दे रहा है। बीवी के चक्कर में माँ पर जुल्म नहीं करने देता और माँ के चक्कर में आकर बीवी पर जुल्म नहीं होने देता। जो बीवियों पर जुल्म होने देते हैं उन शोरों को भी समझना चाहिए कि शादी आपने की, आपकी माँ क्यों आपके सामने आपकी बीवी को सताएगी, क्यों आपकी बीवी पर ज्यादती होगी। बीवी आपकी है, बीवी का हक है कि आप उसके ऊपर जुल्म और ज्यादती से उसको बचाएं, उसके दिल आजारी उसकी तकलीफों से आप उसको बचाएं। आप उसके शौहर है, वो आपसे उम्मीद रखती है। तो ये जब घर गृहस्थी हो जाए ना कि बहू अपने सास की खिदमत करे उसको माँ का दर्जा देकर और अपने शौहर को बात होता बोला आप छोड़ देना माँ छोरे मैं जानू और मेरी अम्मी, यानी सास को अम्मी बोलती है हमारी अमूमन, मैं जानू अम्मी जाने होता रहता हमारे आपस में, हम घर में रहते हैं आपको क्या, आप अपना काम काज करो, यूं करके अपने शोर को इग्नोर करवा दे। ऐसा कितना खुश होगा यार वो शोर कि यार क्या घर है ये, मजा आ गया। ऐसे में उसकी बीवी की अहमियत बढ़ती है कि यार ये बड़ी समझदार औरत है और वो जाकर भी माँ के कदमों में बैठे। बीवी देखे कि मेरे इस्लामी भाइयों, बीवी देखे, दुनिया देखे कि ये वो औलाद है जो अपने माँ बाप के कदमों में बैठी हुई है और माँ बाप की दुआएं लेती है, माँ बाप के करीब बैठती है, माँ को पूछते हैं कि मम्मी क्या चाहिए। ये मेरी नौजवान नस्लो, अपने वालिदैन की इज्जत करना सीखो, अपने वालिदैन की कदर करना सीखो, अपने वालिदैन का एहतराम करना सीखो। आज आप ये काम करेंगे, आज आपकी औलाद देख रही होगी कि आप अपनी माँ के साथ कैसे, यानी वो बेटा देख रहा होगा कि आप दादी के साथ, या बेटी देख रही होगी कि ये दादी के साथ या दादा के साथ मेरे अब्बू और मेरी अम्मी क्या अंदाज इख्तियार करते हैं। एक दिन आएगा कि आपकी उम्र बड़ी होगी, आपकी औलाद की उम्र भी बड़ी होगी, इंशाअल्लाह तबारक व तआला देखेंगे कि आपकी औलाद जितना आपने नहीं किया होगा ना अपने माँ बाप, इंशाअल्लाह उससे बढ़कर आपका करेगी। ये है नस्लों को संवारना कि जैसा करोगे वैसा भरोगे, नस्लों को संवारने वाले काम होने चाहिए। और बुनियादी बात है वालिदैन का अदब, वालिदैन की ताजीम, वालिदैन की मोहब्बत। रसूल पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने बेहतरीन इस मामले में तरबियत फरमाई है। एक शख्स यमन से सरकार की बारगाह में हाजिर हुआ सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, और किसके लिए, राह खुदा में लड़ने के लिए, जिहाद के लिए। कितना अजीम ये काम था। और सरकारे दो जहां सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इंतखाब फरमाया करते थे तो सरकार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने पूछा क्या यमन में तुम्हारा कोई है, तो उसने अर्ज की जी हाँ मेरे वालिदैन है, माँ बाप है यमन में। प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फरमाया क्या तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें इसके इजाजत दी है जो तुम आए हो राह खुदा में लड़ने के लिए। उससे कहा नहीं, वालिदैन ने इजाजत नहीं दी। अब रसूल पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने कुछ यूं इरशाद फरमाया वापस जाओ, वापस जाओ अपने माँ बाप के पास चले जाओ और उनसे इस चीज की राय खुदा में लड़ने की जिहाद की इजाजत तलब करो, अगर वो इजाजत दें तो आ जाना, वरना इन्हीं के साथ उसने सुलूक करना कि वही तुम्हारा जिहाद है। वापस भेज दिया रसूल पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने, इजाजत लो। आज माँ बाप की इजाजत कौन लेता है? माँ बाप रोक के तो रुकते नहीं है। हमारी नस्लों का हाल अजीब गरीब है। ए मेरे नौजवान इस्लामी भाइयों, इस्लामी बहनों, मैं आपसे कह रहा हूं, मैं आपको एक और हदीस, एक वाक्य सुनाता हूं हदीस पाक की रोशनी से, कि एक शख्स बारगाह रिसालत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम यानी नबी पाक की बारगाह में हाजिर हुआ और आपसे हिजरत और बैत करने की ख्वाहिश का इजहार किया। उसने भी ये बतलाया कि जब मैं आपकी खिदमत में हिजरत पर बैत करने के लिए घर से आ रहा था तो मेरे वालिदैन रो रहे थे। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस नौजवान से फरमाया, अपने माँ बाप के पास वापस जाओ और इन्हें हंसाओ जैसा कि उन्हें रुलाया है। ये है तालीम मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, आपके मेरे नबी पाक की तालीम है कि आपने माँ बाप के ताल्लुक से किस कदर ताकीद फरमाई है। यही जन्नत और जहन्नम के दरवाजे हैं, खिदमत करके जन्नत में जाओ या इनको नाराज करके जहन्नम में जाओ। आज हमारी नस्लों में जो सबसे बड़ी बुराइयां है ना, बड़ी बड़ी बुराई, इसमें एक बुराइयां माँ बाप के साथ बेवफाई है, माँ बाप के साथ बेदरकारी है, माँ बाप के साथ बेरुखी है। कत्ता नजर इससे के वालिदैन की आपने तरबियत में क्या किया, क्या नहीं किया, क्या समझाया, क्या नहीं समझाया। बदकिस्मत ये कि हमारी तालीमी इदारों में, स्कूल में, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज में, इस तरह के इदारों में इस तरह के लेसन, इस तरह के भरपूर अंदाज से लेक्चर्स नहीं है कि जब बच्चा कॉलेज से या स्कूल से बाहर निकले तो उसके दिल के अंदर माँ बाप की मोहब्बत का समुंदर ठाठे मारता हो, उसकी रगों में माँ बाप की मोहब्बत हो और वो किसी काम के करने से पहले अपने वालिदैन की इजाजत ले और माँ बाप मना करें तो लब्बैक कहकर घर में बैठ जाए, मैं हाजिर हूं मेरे माँ बाप, आप पर मेरी जान कुर्बान। एक मोहब्बत की बात कर रहा हूं, अब मेरे वालिदैन है। और अगर शादी हो जाए तो शादी के बाद अपने वालिदैन की कदर, भले आप साथ नहीं रह रहे माँ बाप के, हर कोई बच्चा साथ नहीं रहता, शादी के बाद अलग हो जाते हैं तो अलग हो जाते तो क्या माँ इंतजार करती रहेगी आपका कि ये बाप इंतजार करता रहेगा कि ये महीने महीने, दो दो महीने, हफ्ते हफ्ते, दो दो हफ्ते तक मिलते नहीं, आते नहीं है। हनी ये वालिदैन है जो रोजाना आपको देखे बगैर चैन नहीं आता था, घर में आते थे तो पूछते थे कहाँ है, आप चुप जाते थे, आपको याद है, आप घर में चुप जाते थे, अम्मी आपको छुपा देती थी और अबू जुटी जुटी आपको ढूंढा करते थे, कभी पलंग के नीचे देखते थे, कभी सोफे के नीचे देखते थे, पता था कि आप दरवाजे के पीछे छुपे हुए हो, फिर ढूंढ 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 के पकड़ लिया करके आप भी खुश हो जाते थे, अबू ने पकड़ लिया, मेरे अबू को चुप गया था, आपको याद आती है ये बातें, आज माँ बाप को याद आती है वो बातें। हाँ माँ बाप को याद आती है वो बातें, अपने फटे हुए कपड़े और फटे हुए जूते माँ बाप को याद आते होंगे, अपना फटा हुआ रुमाल याद आता होगा कि ये वो औलाद है जिसने मुझे पूछना बंद कर दिया, देखना मिलना बंद कर दिया, मुझे छोड़कर बैठा हुआ है, उसके लिए मैंने एक रुमाल तक नया नहीं लिया था। अपने माँ बाप की कदर करो। अल्लाह ताला ने माँ बाप की कदर, माँ बाप का एहसान मान, वह भी वालिदैन एहसाना, इनका एहसान मानो, इनका शुक्रिया अदा करो, कह दो माँ बाप को जज़ाकअल्लाह, जज़ाकअल्लाह, शुक्रिया, थैंक यू, यू आर माई ग्रेट पेरेंट्स, आप हमारे माँ बाप हैं। इससे पहले कि माँ बाप का साया उड़ जाए, इससे पहले कि माँ दुनिया से चली जाए, इससे पहले कि बाप दुनिया से चला जाए और आप सोचते रह जाए, और जब आपकी औलाद आपको छोड़कर चली जाए और आपको अपने माँ बाप याद आए कि मैंने अपने माँ बाप को छोड़ा था, आज मेरी औलाद है मुझे छोड़, इससे पहले कि माँ बाप दुनिया से चले जाए और आप अकेले हो जाओ और माँ बाप की कब्र पे जाकर फिर आपको माफिया मांगनी पड़ेगी, मगर वहां से आवाज क्या से आएगी, अभी आवाज सुन सकते हैं आप माँ की, अभी आप कह सकते हैं अभी माफ कर दो, तो माँ की आवाज सुन सकते हैं आप, बेटा मैंने तुझे माफ किया। बाप की आवाज सुन सकते हैं आप, बेटा मैंने तुझे माफ किया। लेकिन अगर ये दोनों कब्रों में चले गए, इनकी आवाज कहां से सुनोगे कि बेटा हमने तुझे माफ किया? जिंदगी में तड़पते हो, तरसते रहोगे। अभी इनका साया है, अभी ये है आपके बीच में है। आप शादीशुदा हैं, गैर शादीशुदा हैं, व्हाटएवर, आप बेटी हैं या बेटे हैं, ये आपके माँ बाप हैं। देयर आर योर पेरेंट्स एंड देयर आर विथ यू नाउ दिस टाइम, ये आपके साथ बैठे हुए हैं। इनके एहसानों को याद करो और फिर आप सोचिए कि जब आप जागते थे तो आपके साथ कौन जागता था? आपकी माँ। मैं ये आपके वालिद साहब भी कहेंगे कि बेटा मैं सोता रहता था, माँ जागती थी। आपके अबू कहेंगे सुबह उठकर ये मेरे लिए भी नाश्ता बनाती थी बेटा, आपके लिए भी खाना बनाती थी, मेरे लिए लंच भी तैयार करती थी बेटा, आपके लिए भी खाना तैयार करती थी। अबुद्दीन याद करो, जब आपको अंडा पसंद नहीं हुआ था, मम्मी ये कौन सा अंडा बनाया बेटा, कौन सा बना दो, दूसरा बना दो, आज आपकी अम्मी को एक केला नहीं दिखती आप, जहां आपकी अम्मी बैठी हुई है, जिन्होंने अपने माँ बाप को लॉस में डाला है, माफी मांगे खुदारा लेकर आ जाए, जिन्होंने अपने माँ बाप को किसी घर में अकेला रखा हुआ है, हाथ जोड़ता हूं इनको मना लो। अगर साथ नहीं रह सकते, अगर साथ नहीं रह सकते ठीक है नहीं रह सकते, मगर उन्हें अपनी जिंदगी से तो अलग मत करो यार, उन्हें अपने दिलों से तो अलग मत करो। वो पोता पोती को देखने को तरसे, ये कौन सी सजा दे रहे हैं आप इनको? सजा है इनको। अगर बाप नाराज है ना, आपका कौन सा आपकी आपकी इबादतें कैसे कबूल होंगी? आपके बाप नाराज है। एक बात कर रहा हूं मैं आपको कि ये होता है कि अगर वालिद नाराज हो तो इबादतें कबूल होने ना होने के ताल्लुक से आला हजरत की सराहत मौजूद है, मैं इंशाल्लाह आपको देखकर बताता हूं। अलबत्ता ये कि मेरी ये चंद गुजारिशात थी आपके सामने वालिदैन के ताल्लुक से, अगर नस्लों पर बात हो रही है तो हमारी नस्लों में हमारी औलाद में जो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है वो माँ बाप के साथ बदसलूकी है, और अल्लाह करेगा ये बदसलूकी दूर हो जाए और औलाद माँ बाप की इताअत और फरमा बरदार बन जाए। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद, तूबु इलल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। ये मैं जो आला हजरत का मुझे जुजिया याद आ रहा था, आला हजरत इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं, फिर मैं इंशाल्लाह आपकी कॉल्स लेता हूँ, बाप की नाफरमानी अल्लाह जब्बार और कहार की नाफरमानी है, और बाप की नाराजी अल्लाह जब्बार और कहार की नाराजी है। आदमी माँ बाप को राजी करे तो वो उसके जन्नत हैं, और नाराज करे तो वही उसके दोजख है। जब तक बाप को राजी ना करेगा उसका कोई फर्ज, जब तक बाप को राजी ना करेगा उसका कोई फर्ज, कोई नफल, कोई नेक अमल असलन कबूल नहीं। अजाब आखरत के अलावा दुनिया में ही जीते जी सख्त बला यानी शदीद आफत नाजिल होगी, मरते वक्त माज़ अल्लाह अज़्ज़ा वजल कलिमा नसीब ना होने का खौफ है। ये जो मुझे याद आए तो मैंने कोई भूल ना हो जाए, इसलिए मैंने आपको पढ़कर, समुंदरी गुंबद अमीर सोन का रिसाला है, इसको देख लीजिएगा, इसमें ये इबारत लिखी हुई थी, अपने माँ बाप को मना ले। अभी भी अगर घर में है खुशी खुशी मना ले, हैप्पी। माँ बाप से मेरी दरखास्त है, अगर बहू की तरफ से, बेटे की तरफ से, बेटे के बेटों की तरफ से, बेटियों की तरफ से कोई भी खुदा ना खास आपको तकलीफ पहुंची है, माफ कर। मैं कहता हूं अगर उन्होंने माफी नहीं मांगी ना फिर भी माफ कर दो, है तो आप ही कहना, और सब मिल कर रहे और अपने बड़ों की इज्जत करें। हदीस पाक में आता है जो हमारे बड़ों के अदब नहीं करता है, एहतराम नहीं करता अपने, हमारे छोटों को शफकत हम में से नहीं है। ये घर में जो बड़े हैं ना, इनका अदब करें, बहू भी करे, बेटा भी करे, बेटी भी करे, पोते भी करे, पोतिया भी करे, नवास जो भी हैं, नवासे नवासियां सारे मिलकर ये अपने घर के बड़ों का अदब एहतराम करें, जिस घर में इंशाल्लाह अल्लाह की रिजा शरीयत के दायरे में रह कर ये सारे काम किए जाएंगे, कहीं भी अल्लाह की नाफरमानी और शरीयत के उसूल और अखलाकियात का खून नहीं होना चाहिए, किए जाएंगे इंशाल्लाह उस घर में बरकत भी आएगी, दुआएं भी मिलेंगी, इज्जत भी मिलेंगी। और बड़ों को चाहिए कि अपने छोटों पर शफकत करें, मोहब्बत करें, इन्हें तकलीफों में ना रखें और इनको भी खुशियां दें, इनको भी माफियां दें और इनको भी राहतें दें, इनको राहतों का सामान करें इनके लिए। रमजान है, मगफरत का अशरा शुरू हो चुका है, मगफरत का अशरा शुरू हो चुका है। अपने बच्चों पर शफकत करें, अपने बच्चों से प्यार करें, अपने बच्चों के लिए नरमियां करें। बहू है तो उसकी भी खताओं को माफ करें, बेटी है तो उसकी भी गलतियों को माफ करें, बेटा है तो उसकी भी गलतियों को माफ करें और मोहब्बतों के साथ रहें, दरगुजर के साथ रहें। अल्लाह आपके हम सबके घरों को अमन, प्यार, मोहब्बत, सुकून का गहवारा बना दे, बस मदीना मदीना हो जाए और रमजान की ऐसी बरकत नसीब हो। ये लॉकडाउन, माशी तकलीफ जो भी, अल्लाह ताला सब दूर भी करे मगर हमारे घर का अमन भी ये दूर हो, घर का अमन भी बाकी रहे। अल्लाह आप सबको, हम सबको दुनिया आखिरत की भलाई नसीब फरमाए। मैंने पूरा एक बयान ही कर दिया, क्या करूँ, जज्बात होते हैं। मैंने पढ़ा था, मुताला किया था, तो मैंने कहा ये आपको बयान कर दूंगा। कॉल्स लेता हूँ।
निगरानी शुदा का सिलसिला हमारी नस्लें, इसमें वालदैन के मौजू पे गुफ्तगू होती है। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारी चीजें सीखने को मिल रही हैं। दावत इस्लामी के मदनी माहौल की भी अपनी ही बरकतें हैं। एक दिन छोटे भाई के किसी मामला पर मैं अपने वाले साहब से बात कर रहा, तो बस बातों ही बातों में मैं ऊंची आवाज में बात करने लग गया। तो जैसे ही मैंने बात खत्म की है फोन पे, मेरे बच्चों की अम्मी ने मुझको समझाया, मुझे कहा कि ये आपने ठीक नहीं किया, आपने अब्बू के साथ ऊंची आवाज में बात क्यों की, फौरन दोबारा फोन करो और उनसे माफी मांगो। यूं करके मेरे बच्चों की अम्मी ने मेरी इसलाह की और मैंने फिर दोबारा उसी वक्त कॉल की और उनसे माफी मांगी। तो अल्हम्दुलिल्लाह दावत इस्लामी का मदनी माहौल, मदनी चैनल की बरकत से घर का माहौल अच्छा होता है। मैं यही अर्ज करूंगा देखने सुनने वालों को कि मदनी चैनल को अपने घर में लाजमो मलजूम कर लें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहु।
अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। माशाल्लाह बहुत खूब, बहुत अच्छा हुआ, बहू का किरदार भी अच्छा रहा। ऐसे में वालिद को अगर नहीं कहा तो कह भी देना कि आपकी बहू ने मेरी तवज्जो दिलाई और मैंने माफी मांगी, तो ससुर के दिल में बहू की अहमियत भी बढ़ेगी। ये भी होना चाहिए कि माँ बाप के दिल में बहू की अहमियत पैदा करने के लिए बेटा कोशिश करे कि उनकी मतलब के लगे कि हमारी बहू हमारे बेटे को बिगाड़ नहीं रही है बल्कि हमारे कदमों में डाल रही है। गलत फहमियां होती हैं बाज़ों का, वो दूर हो जाएंगे इंशाल्लाह। माशाल्लाह मुबारक, बहुत अच्छी कॉल थी जी।
मेरा नाम सर अली हैदर है और मैं बहावलपुर से बात कर रहा हूँ। ये जो आज मौलाना साहब मौजू लेके आए हैं बच्चों का वालिदैन से प्यार, ये बहुत अच्छा मौजू है, इसी तरह के प्रोग्राम होने चाहिए।
शुक्रिया, जज़ाकअल्लाह खैरा जी।
निगरानी शुरा को अल्लाह ताला खूब बरकतें नसीब फरमाए, जो कि हमारे लिए और इस माशरे के लिए बहुत ही अच्छे और नायाब टॉपिक लेकर आते हैं। ये घर घर का टॉपिक है। हर लड़की शादी से पहले बहुत ही अच्छे से मिलती है, सास के साथ भी, ससुर के साथ, सब के साथ, और बहुत से वादे करती है कि मैं अच्छे से रहूँगी, सबको साथ लेके चलूँगी, तोड़ने वाली नहीं हूँ मैं। और जैसे ही शादी हो जाती है तो वो लड़की, अब उसका जहन ये होता है कि ये लड़का तो बिल्कुल अपनी माँ से कट ऑफ हो जाए और मैं जो है अपनी माँ को जब ये चला जाए घर से तो फोन करके सारी यहाँ की स्टोरियाँ वहाँ सुनाऊँ। तो और फिर अगर इसके पास वसाइल इतने ना हो तो लड़के के पास, तो लड़की जो है बाज़ औक़ात बच्चों के जरिए ब्लैक मेल भी करती है। तो इस सिलसिले में आप क्या मशवरा देंगे कि शादी किस तरह इंसान करे, कैसी लड़की के साथ करे कि ये मसाइल कम से कम हो। और अब ये भी आजकल ऐसा टाइम है कि ये भी नहीं पता चलता कोई मजहबी घराने का है या सिर्फ दिखने में ही लगता है अंदर उसके क्या है। तो ये बहुत ही आजकल बहुत ही अजीबोगरीब सिचुएशन बनी हुई है। तो इस बारे में थोड़ा सा मदनी फूल अता फरमाएं।
دیکھیں ہر بہو تو ایسی ہوتی نہیں ہوگی، ظاہر ہے تو گھر چلانے والی، گھر ابھی تھوڑی دیر پہلے یہ کال آئی کہ اس نے کتنے اچھا کردار ادا کیا بہو نے، ایسی بھی بہو ہیں اور وہ بھی ہیں جیسا آپ کہہ رہے ہیں. اب دو چیزیں میں آپ قرض کروں گا، ایک حد تک کیا معلومات لے سکتے ہیں، ایک حد تک معلومات لے سکتے ہیں کہ گھر نیک ہے، مذہبی ہے، عاشقان رسول کا گھرانہ ہے اور بہت چند چیزیں، لیکن یہ بات طے ہے کہ بہت ساری چیزیں شادی کے بعد ہی ڈکلیئر ہوتی ہیں، بہت ساری چیزیں شادی کے بعد ہی پتا چلتا ہے. یعنی سمجھو کہ بعد وقت جیسے کہ ایک مشین کتنی بعد وقت دکھنے میں اچھی، بہتر، خوبصورت اور پائیدار لگتی ہے، لیکن گھر میں چلا تو چلتے ہی گراڑی ٹوٹ گئی، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا. اب اس کا اندر کیا ہے، یہ تو اندر آنے کے بعد پتا چلتا ہے. تو یہ ہوتا ہے بعد وقت ظاہر اچھا ہوتا ہے تو باطن اس ظاہر سے بھی زیادہ اچھا نکل آتا ہے، یہ بھی ہوتا ہے. اور بعد وقت یہ ہوتا ہے کہ ظاہر اچھا ہوتا ہے لیکن باطن اچھا نہیں ہوتا، اور بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ظاہر اتنا اچھا نہیں تو باطن بہت اچھا ہوتا ہے. یہ غنیمت ہے کہ چلو ظاہر اتنا اچھا نہیں ہے، باطن اچھا ہونا چاہیے، کردار اچھا ہونا چاہیے. بظاہر اتنی زیادہ سہولت نہیں ہے لیکن اور بہت ساری سہولتیں ہوتی ہیں، یا بظاہر یہ ہوتا ہے کہ دکھنے میں بہت اچھی ہے لیکن اندر سے بڑی گندگی ہوتی ہے، کردار دماغ خراب ہوتا ہے. تو یہ چیزیں ہوتی ہیں، لیکن یہ چیزیں بعض اوقات رشتہ ہو جاتا ہے، رخصتی ہو جاتی ہے. لڑکے سے کیا بھی یہی ہوتا ہے، لڑکا شروع میں بہت اچھا نظر آتا ہے لیکن شادی کے بعد جب باقاعدہ داماد بن کر آتا ہے پھر پتا چلتا ہے کہ کیسا جان کو آ گیا یہ. تو کئی چیزیں ایسی ہوتی ہیں، سسرالوں کے آپس کے باتیں بھی ایسی ہوتی ہیں کہ جب تک بات پکی ہوئی ہوتی ہے تب تک بڑی مطلب کہ وہ محبت بڑا انداز ہوتا ہے، لیکن جب شادی ہو جاتی ہے تو سچے اگر یوں سمجھو کہ بھائی بہنوں کے بچوں میں بھی شادی ہوتی ہے نا، کہ مطلب وہ خالہ کی ماموں کا اور وہ پھوپھی کا بیٹا بیٹی ان کی بھی شادی ہو جاتی ہے، تو بعض اوقات بدقسمت ہے بھائی بہنوں میں بھی نفرتیں ہو جاتی ہیں. وہ کہتا ہے تو نے میری بیٹی کو خوش نہیں رکھا، تو بولتا تو نے میری فلاں کو خوش نہیں رکھا. تو یہ ہو جاتے ہیں. تو کئی چیزیں ایسی ہیں جو شادی کے بعد ہی ڈکلیئر ہوتی ہیں، اگرچہ شادی سے پہلے ہم کچھ نہ کچھ معلومات لے لیتے ہیں، مگر میں یہی عرض کروں گا کہ آئیڈیل سچویشن نہیں بنتی کہ جیسا آپ چاہتے تھے 100% ویسا ہو، یہ نہیں ہوتا. کچھ نہ کچھ کمزوریاں آپ میں بھی ہیں، کچھ نہ کچھ کمزوریاں آنے والے میں بھی ہیں. جو آئی ہے اس کو بھی اپنے آئیڈیل گھر ملے ضروری نہیں ہے، اور جو لائے ان کو بھی آئیڈیل گھر ملے وہ ضروری نہیں ہے. تو کمپرومائز، سیکریفائز اور برداشت سے گھر چلتے ہیں، یہ ہمیشہ یاد رکھیے گا. یہ میری درخواست ہے. جی کال دیں.
نگرانی شورا نے جو آج ٹاپک کا انتخاب کیا ہے، اولڈ ہاؤس میں والدین کو چھوڑ آتے ہیں بچے، تو اس کی جو شروعات ہوتی ہے وہ اس طرح ہوتی ہے کہ جب بچے چھوٹے ہوتے ہیں تو وہ باہر ان کی جو تربیت ہے وہ دینی نہیں کرتے. اگر وہ نماز پڑھنے جا رہا ہے تو کہتے ہیں مولوی نہ بنو. تو پھر جب اسی طرح آپ نے ان کو ویسٹرن کلچر میں پڑھایا ہے اور ان کی تربیت کی ہے، تو جب وہ بڑے ہوئے ہیں تو تب بھی وہ پھر اسی کلچر کو اڈاپٹ کریں گے. تو پھر جب اولاد ان کو اولڈ ہاؤس میں چھوڑ آتی ہے، پھر والدین مولوی کے پیچھے ہی بھاگتے ہیں کہ بھئی اب اس کو کہو یہ دعا کرے کوئی. تو ہمیں چاہیے کہ دینی تعلیم و تربیت کیا کریں، اور اس تربیت کے لیے دعوت اسلامی بہت اچھا کام کر رہی ہے، تو سب کو چاہیے کہ دعوت اسلامی کو اپنے بچے وقف کر دیں.
ماشاءاللہ، میں تائید کرتا ہوں آپ کی بات کی. کوئی عالم دین، عاشق رسول، وہ دین اور اسلام کو صحیح سمجھنے والا اور عمل کرنے والا اللہ نے چاہ تو آپ کو نہیں ملے گا جس نے اپنے برے ماں باپ کو اپنی زندگی سے باہر کر دیا ہو، یا اپنے یوں اس کے ساتھ زیادتی کی ہو. تو اپنے بچوں کو نیکی کے راستے پر لے کر آئیں، اور خوف خدا اور عشق رسول اس کی رگوں میں داخل کریں، انشاءاللہ یہ آپ کا ہو جائے گا. میں اپنے تمام تر بچے بچوں سے، نوجوانوں سے عرض کرتا ہوں کہ اسلام و دین کا یہ جو بنیادی پیغام ہے انشاءاللہ کریں نسلیں سوار نہیں ہیں، تو ان کے اندر صحیح معنوں میں خوف خدا عشق رسول داخل کریں، ماں باپ کی محبت و تعظیم دیں. ماں باپ کی ہر وہ بات جو شریعت سے نہ ٹکراتی ہو وہ ماننی ہے. ہاں خدا نہ خاصا کر والدین وہ بات کرتے ہیں جو شریعت کے خلاف ہے، جو دین کے خلاف ہے، جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی والی بات ہے، تو وہ نہیں مانی جائے گی. بس نہ ماننے کا بھی ایک انداز ہے, اس میں بھی ماں باپ سے کوئی لڑا نہیں جاتا, نہیں مانے جاتے, کیونکہ اللہ اور اس کے رسول کے فرمان یہ سب سے پہلے اور یہی ہے کہ ان کے خلاف نہیں جایا جائے گا, یہ یاد رکھیے گا. کافی ٹائم ہو گیا ہے اور پروگرام کا وقت بھی ختم ہو رہا ہے, کافی کالس آپ کی ہوں گی, میں بیان طویل کر گیا. اللہ کرے گا ہم اپنے والدین کا ادب کریں, اور بڑوں کو چاہیے, والدین کو چاہیے, گھر کے ہر بڑے کو میں کہہ رہا ہوں کہ اپنے گھر کے بچوں پر شفقت شفقت کریں, انشاءاللہ آپ ان سے ادب اور احترام لیں گے اللہ نے چاہ تو, اور وہ شفقت نہ بھی کریں تب بھی ادب اور احترام آپ نے بچوں آپ نے لازمی کرنا ہے, انشاءاللہ گھر امن کا گہوارہ رہے گا. اجازت دیجیے, صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.
میری آنے والی نسلیں تیرے عشق ہی میں مچلے, انہیں نیک تم بنانا, مدنی مدینے والے.